नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग। भारत और उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण खनिजों और क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ उज्बेकिस्तान के दृढ़ रुख की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौते का अंतिम मौका, ईरान का बातचीत की खबरों का खंडन। और भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की।
ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारे चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदौफ की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। लगभग $1 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का जिक्र करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में शुरू हो रही है। 2 दिवसीय बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास समझौता करने का अंतिम मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। एक रिपोर्ट।
श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के अनुरोध के बाद यह कार्रवाई टाल दी गई। श्री ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है, इसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने से कोई संबंध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए मैं चाहत।
गजा में युद्ध के बाद के बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने कल इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एक बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्त्रीकरण समझौते पर चर्चा करना था। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि गजा के उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लोदिनोव ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ रचनात्मक और विस्तृत बातचीत की। बयान में यह भी कहा गया है कि लक्ष्य स्पष्ट है और इस पर कोई संदेह नहीं है कि गजा पट्टी में हथियारों का पूर्ण निरस्त्रीकरण और बंदूक के शासन का अंत होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार देर रात इस समझौते की घोषणा की, जो पिछले साल हुए व्यापक युद्ध विराम समझौते का हिस्सा है। इसमें इसराइल से अपने सैन्य अभियान रोकने और गजा में हमास और उसके सहयोगियों से सभी प्रकार के उग्रवादी गतिविधियों को बंद करने का आह्वान किया गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमरीकी राज्यों के समूह ने भारत सहित 60 देशों पर नए शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का तर्क है कि इस शुल्क से अमरीकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए लागत बढ़ जाएगी। 10 से 12.5% तक ये शुल्क 24 जुलाई को पिछले वैश्विक शुल्क की समय सीमा समाप्त होने के बाद लागू किए गए थे। श्री ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि नए उपायों का उद्देश्य वैश्विक व्यापार में जबरन श्रम से निपटना है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स और अन्य राज्य नेताओं ने अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय से इन शुल्क को अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है। उनका दावा है कि प्रशासन जबरन श्रम संबंधी चिंताओं को बहाना बनाकर व्यापक शुल्क लगा रहा है, जो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत ने अपनी व्यापार नीति में संशोधन करके जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। रोम में रूस के दूतावास ने कल मॉस्को के एक रेस्टोरेंट में हुए घातक बम विस्फोट के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया है और इसे रूस में तालवी समुदाय को डराने का प्रयास बताया। दूतावास ने कहा है कि शनिवार रात रेस्टोरेंट पर हुए हमले में 5 लोग मारे गए और 19 घायल हो गए। मॉस्को के मेयर सरगेई सोबियानिन ने इस बम विस्फोट को एक क्रूर आतंकवादी कृत्य बताया। यूक्रेन के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई। यूक्रेन द्वारा रूस के कई क्षेत्रों में सैन्य, ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए गए व्यापक ड्रोन हमले में 8 लोग मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उसकी सेनाओं ने एंगल्स में एक सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जहां लंबी दूरी के रूसी बमवर्षक विमान रखे जाते हैं। इथियोपिया के अमहारा क्षेत्र में तेज बारिश के कारण भूस्खलन में 14 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। बचाव दल खोजबीन में लगे हैं और कई अन्य अभी भी लापता हैं। स्थानीय आपदा निवारण कार्यालय के विशेषज्ञों की टीम को खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैनात किया गया है। यह आपदा सातकाने देबरे मितमाक सेंट मैरी मठ में हुई, जहां सैकड़ों श्रद्धालु पवित्र जल अनुष्ठान के लिए एकत्रित हुए थे। समारोह के दौरान पास के पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी गिर गए। 11 पीड़ितों को मठ में ही दफना दिया गया है, जबकि अन्य को उनके गृह नगर ले जाया गया है। कुछ शवों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। घायलों को लगभग 70 किलोमीटर दूर देबरे ब्रहान के अस्पतालों में ले जाया गया है। मूसलाधार बारिश और जलवायु संबंधी चरम मौसम के कारण बरसात के मौसम में इथियोपिया में भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल के वर्षों में इसी तरह की आपदाओं में सैकड़ों लोगों की जान गई है। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नेपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। महिला युगल में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर के साथ प्रिया कोंजिंगबाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग। भारत और उज्बेकिस्तान महत्वपूर्ण खनिजों और क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ उज्बेकिस्तान के दृढ़ रुख की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से हैदराबाद में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौते का अंतिम मौका। ईरान का बातचीत की खबरों का खंडन। और भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।